हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला करने के 8 कारण, जिनमें से हम तीसरे कारण पर है। गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु भगवान ने ये पूरी गोवर्धन लीला रचाई, और ये जो तीसरा कारण, तीसरी शिक्षा जिसमें भगवान ये दर्शा रहे हैं कि उनके नजरों में पूजनीय कौन है, आदरणीय कौन है। यहां पर गिरिराज गोवर्धन, जिन्होंने अपने ये दो गुण दर्शाए हैं जिनके वजह से वो पूजनीय हुए हैं। गोवर्धन कोऑपरेट्स विद द प्लान ऑफ कृष्णा, lives to selflessly serve others. तो हम पिछले दो सत्रों से ये रामायण से प्रसंग लिए हैं, जहां पर आदरणीय और पूजनीय अपने उदाहरण से कौन बने ये बताया गया है। विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, इनकी जीवनी से हम 52 शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। तो विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, हालांकि एक समय ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। वशिष्ठ मुनि तो नहीं बने थे, परंतु विश्वामित्र मुनि वो वशिष्ठ मुनि को अपना जानी दुश्मन, कट्टर दुश्मन मानने लगे थे। और आगे चलकर ये दोनों ऐसे मित्र बने कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दोनों गुरु हुए। कल्पना कीजिए कि जो एक समय जानी दुश्मन, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दोनों गुरु बने हैं। ऐसे आदरणीय हुए ये दोनों। आज एक बहुत विशेष दिन भी है, मुझे बताया गया है कि आज फ्रेंडशिप डे है। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो भी काफी रेलेवेंट है आज के दिन को देखते हुए, कि ये दो शख्स विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, इनके बीच फ्रेंडशिप कैसे हुई, ये बहुत गोपनीय बात है, रहस्यमय बात है और जानने लायक बात है कि इन दोनों के अंदर फ्रेंडशिप कैसे हुई। तो आज का हमारा सत्र शुरू करने से पहले आपको हम एक फ्रेंडशिप डे के ऊपर वीडियो दिखाना चाहेंगे।
It's actually quite rare to maintain a friendship over a period of long duration, because essentially conditioned souls think in terms of I and mine. I have my desires, my passions. What gives me enjoyment is priority. And if someone facilitates or assists my selfish enjoyment, that is a friend. But if that same person creates an impediment in my enjoyment, then they're no longer a friend. I move on to find somebody else. But from a spiritual perspective, friends are those who are willing to rise to a higher level beyond our own tastes, beyond our own inclinations, beyond our mood swings, beyond the fickle, restless nature of the mind and senses and the ego. And are really there to serve each other. Because from a spiritual perspective, we are all servants of the Lord. And because every living being is a part of the Lord, we are servants of each other. So many times, we're so interested in somebody being my friend. But from a spiritual perspective, it's more important to be a friend to that other person. If both people have that consciousness to be a friend, There is a very, very deep spiritual relationship.
जय श्री लड़ादनाथ स्वामी महाराज की जय. Whenever someone offends me, I take my soul so high where the offense can't reach me. वशिष्ठ मुनि के ऊपर विश्वामित्र मुनि ने जो प्रहार प्रारंभ किया और बिना वजह से. वशिष्ठ मुनि तो वो विश्वामित्र मुनि का आदर सत्कार कर रहे थे अपनी कुटिया में बुलाकर, और न केवल उनको बल्कि उनकी पूरी सेना को, उनके पुत्रों को. परंतु विश्वामित्र मुनि के अंदर जो द्वेष की भावना जागृत हुई, तो जब मैं ये प्रसंग पढ़ रहा था तो मैं ये जो कोट आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, ये वशिष्ठ मुनि के चरित्र को देखते हुए एक साक्षात्कार आया. और हमने उदाहरण लिया था पिछले दफा, When eagles are attacked by the crows, they don't fight back with the crows, they simply fly high. तो हमें ये सीखने योग्य बात है कि हमारे जीवन में जब ऐसे प्रसंग हों तो हमारा कॉन्शियसनेस उस समय क्या होना चाहिए, ये वशिष्ठ मुनि हमें सिखाते हैं. तो एक छोटा सा रिकैप, हमारे पिछले सत्र में हमने क्या चर्चाएं की, तो हम अब इस कथा के उस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां विश्वामित्र मुनि उस शबल गाय को जबरदस्ती लेना चाहते थे, अपना बनाना चाहते थे. और जब शबल गाय से दूध या वो बड़े बड़े पकवान निकलने के बजाय अस्त्र शस्त्र और सैनिक सेनाएं निकलने लगी और परास्त कर दी विश्वामित्र मुनि की पूरी सेना, और उनके जो 100 पुत्र को हुंकार से वशिष्ठ मुनि ने परास्त कर दिया, तत्पश्चात विश्वामित्र मुनि जाते हैं तपस्या करने, भगवान शिव जी को रिझाने, और उनसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के पश्चात पूरे विश्व के जितने आप कह सकते हो कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र वो प्राप्त कर लेते हैं, और पुनः लौटते हैं वशिष्ठ मुनि पर प्रहार करने के लिए. और वशिष्ठ मुनि क्या करते हैं, वो केवल अपना ब्रह्मदंड अपने सामने रखते हैं, और उनके ब्रह्मदंड के तेज के वजह से ये जितने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र को ये ब्रह्मदंड निगल लेता है. और विश्वामित्र मुनि ये देखने के पश्चात और ज्यादा द्वेष की अग्नि में जलते हैं, और फिर वो तपस्या करने निकलते हैं. अब शिवजी को रिझाने नहीं, ब्रह्मा जी को रिझाने, ब्रह्मऋषि बनने के लिए दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ते हैं. और फिर हमने इक्ष्वाकु वंश के त्रिशंकु, उनके विषय में सुना. तो ये कुछ लेसन्स हमारे पिछले सत्र से. द डिग्री ऑफ इंसल्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ द पर्सन कॉजिंग इट. A pure Brahmana's purity is far more powerful than all the powers put together of a proud Kshatriya. Trying to become someone else by cheap imitation is insulting the Creator. Trishanku, ये एक बहुत ही विशेष और विचित्र शख्सियत है रामायण के अंदर, कि जिनको एक अलग प्रकार का गुरूर था अपनी सुंदरता के ऊपर, कि मुझ जैसा सुंदर कोई है ही नहीं. और वो अपनी सुंदरता को दिखाना चाहता था सबको, यहां तक कि उसने ये एक बहुत ही विचित्र विचार अपने मन में कर लिया कि मुझे अपने इसी सुंदर शरीर के साथ स्वर्ग में जाना है, और ठान लिया कि मैं जाके रहूंगा सह शरीर स्वर्ग में जाकर लहूंगा। तो पहले वो वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, वशिष्ठ मुनि उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बेवकूफी मत करो। फिर वो वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के पास जाते हैं ऑफर लेकर, तो वो भी रफा दफा कर देते हैं त्रिशंकु को। तो त्रिशंकु फिर विश्वामित्र मुनि के पास, तो त्रिशंकु जानते थे कि विश्वामित्र मुनि ये बहुत बड़े तपस्वी बन चुके हैं और इनकी कट्टर दुश्मनी वशिष्ठ मुनि से है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो कई बार दोस्ती का फायदा उठाया जाता है, दुश्मनी का भी फायदा उठाया जाता है। देखिए तो यहां पर त्रिशंकु ये कौन से कैटेगरी का व्यक्ति कि वो इन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठा रहा है। अब हमने त्रिशंकु जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, विश्वामित्र मुनि के सामने त्रिशंकु किस हिसाब से प्रेजेंट करता है कि भाई मैंने एक बहुत मासूम सा सवाल पूछा था, मेरी एक मासूम सी इच्छा थी कि मुझे इसी शरीर में स्वर्ग जाना है। देखो वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि वशिष्ठ के पुत्रों ने श्राप देकर बदसूरत बना दिया था त्रिशंकु को। परंतु प्रेजेंट किस प्रकार से किया गया विश्वामित्र मुनि को कि मैं कितना ईमानदार था, मैं कितना सच्चा व्यक्ति हूं। ईमानदारी और सच्चाई को कैसे प्रेजेंट किया गया, अधर्म को छिपाते हुए या अधर्म को धर्म दर्शाते हुए। मुझे याद है हमारा जब वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, बहुत वो महत्वपूर्ण जब इंटरव्यू, केवल इंटरव्यू नहीं होता, उसके अंदर बहुत से अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं, क्योंकि फाइटर पायलट अगर किसी को सिलेक्ट करना है तो पूर्ण रूप से उसको परखा जाता है। तो ये काफी दिनों तक ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये स्क्रूटिनाइज करते हैं जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं फाइटर पायलट के लिए। तो जब हमारा वो स्क्रूटिनी चल रहा था तो उसमें एक एक्सरसाइज थी, पिक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज थी जिसके अंदर वो आपको कुछ नेगेटिव पिक्चर्स दिखाएंगे और उन नेगेटिव पिक्चर्स को देखकर आपको एक पॉजिटिव राइटअप लिखना है या प्रेजेंटेशन देना। जैसे मान लो एक व्यक्ति दूसरे को खंजर से मार रहा है, अब ये नेगेटिव पिक्चर है ना, दिखने में तो नेगेटिव दिखता है, परंतु आपको इसके अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं प्रेजेंट करना है, आपको उसके अंदर पॉजिटिविटी निकालनी। एक कोई पुरुष स्त्री का बलात्कार कर रहा है ये पिक्चर दिखाया जाएगा, अब इसमें से पॉजिटिविटी निकालो आप, और आपको स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाता है, इस टाइम के अंदर आपको ये सब लिखकर राइट अप देना है पॉजिटिविटी, उसमें बिल्कुल भी कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो होता हमारा पिक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसमें फिर एक और स्टेप आगे था जिसके अंदर आपकी एटीट्यूड कितनी पॉजिटिव है, क्योंकि आप किसी वॉर जोन में हो, एक पूरा फाइटर जेट आपके अंडर कंट्रोल में है, कुछ हो जाए तो आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। तो मुझे याद है एक मेरा बैचमेट, तो उसने एक प्रेजेंटेशन दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन था उसका। उसने प्रेजेंटेशन दिया ये पॉजिटिविटी के ऊपर, शोले जो सिनेमा था पुराना बहुत फेमस जो ब्लॉकबस्टर हुआ था ये शोले फिल्म, तो उसमें गब्बर सिंह, तो गब्बर सिंह की पर्सनैलिटी ली इसने और गब्बर सिंह की पर्सनैलिटी को इसने पूरा पॉजिटिवली प्रेजेंट किया। मेरे ख्याल से यहां पर जितने बैठे हैं पुराने सबने वो सिनेमा देखा होगा और फेमस गब्बर सिंह और गब्बर सिंह का डायलॉग, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे अपना बेल्ट हिलाते हुए, है ना। तो ये कलीग ने जिस हिसाब से गब्बर सिंह को प्रेजेंट किया है वहां पर डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टेस्ट में तो ये इसको नंबर वन मिला, टॉपर था ये उस टेस्ट में। तो जो भी थोड़ा बहुत मुझे याद है उसने शुरुआत की आदरणीय गब्बर सिंह, आदरणीय प्रेरणास्पद गब्बर सिंह की शख्सियत क्या थी। तो सबसे पहले उसने कहा कि गब्बर सिंह वो सादा जीवन उच्च विचार उसका वो पालन किया करता था कि पूरे रामगढ़ में, रामगढ़ का निवासी था ना, तो पूरे रामगढ़ में गब्बर सिंह ने अपने लिए एक भी कोठी नहीं बनाई, केवल पहाड़ों पे रहता था वो, सादा जीवन जीता था, भिक्षुक का जीवन जीता था। आसपास के गांव में जाकर जैसे हिंदू धर्म में भिक्षा मांगी जाती है वैसे हिंदू धर्म का बहुत कट्टरता से पालन करता था, भिक्षुक का जीवन जीता था वो, सादा जीवन था, भिक्षुक का जीवन था उसका, आदरणीय गब्बर सिंह, और बहुत दयालु प्रवृत्ति का इंसान था वो। क्योंकि जब ठाकुर का एक हाथ लिया उसने तो हालांकि जान भी ले सकता था ठाकुर की, लेकिन उसने कहा कि नहीं, तेरे इस हाथ ने मुझे सजा दी है तो मैं केवल हाथ ही लूंगा। फिर बहुत से गब्बर सिंह के और गुण, नृत्य संगीत का शौकीन था गब्बर सिंह कि बसंती को उसने, बसंती के अंदर जो उसके अंदर जो नर्तकी थी उसका सम्मान किया उसने, तो नारी का भी सम्मान वो करता था। हालांकि वो बसंती के साथ कुछ भी कर सकता था लेकिन उसने कुछ किया नहीं क्योंकि वीरु था वहां पर, इसलिए उसने बसंती के साथ कुछ नहीं किया, उल्टे उसने उसके पूरे गिरोह के सामने बताया कि बसंती के अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण हैं, वो बसंती दिखाएगी अभी। और इतना ही नहीं, वो गब्बर सिंह अनुशासन प्रिय था कि उसने प्रोजेक्ट दिया था कालिया को और अन्य को कि जो कर कर आओ, वो जब नहीं कर कर आए तो बहुत अनुशासन प्रिय था गब्बर सिंह, तो उसने प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने पर उनको सजा दी। फिलोसॉफिकल भी था, उसने जब पिस्तौल में 3 गोलियां डाली तो वो घुमाते हुए, चेंबर को घुमाते हुए उसने बहुत फिलोसॉफिकल पॉइंट कहा कि इस चेंबर में 3 जिंदगी है 3 मौत है, तो बहुत मननशील थॉटफुल व्यक्ति था वो। और समाज का बहुत बड़ा सेवक था वो। समाज का सेवक कैसे था कि दूर दूर गांव में जब बच्चा रात को सोता नहीं था तो बिना वहां पहुंचे उसकी सेवा पहुंच जाती थी, मां कहती थी कि बेटा सो जा। तो देखो कहां कहां तक उसकी पहुंच थी, कहां कहां तक उसने समाज सेवा करी। और हास्य का प्रेमी था कि उनको सजा देने से पहले उनको हंसाया बहुत उसने, कालिया और अन्यों को बहुत हंसाया, उनको हंसा हंसा के कि जो भी अगर तुमको मरना भी है तो तुम हंस के मरो, रो के मत मरो। तो इस प्रकार से गब्बर सिंह वो एक बहुत ही आदरणीय व्यक्ति था वो, और सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर था वो, क्योंकि उसने अंत में कह दिया, ऐसा एक उसका फाइनल मोटिवेशनल लाइन उसने बोल दिया, जो डर गया वो मर गया। ये जो फेमस लाइन हुआ है, ये फेमस लाइन कॉइन किसने किया था? आदरणीय गब्बर सिंह ने। तो त्रिशंकु उसी प्रकार से उसने उसी प्रकार से प्रेजेंट किया। फिर उसने जो हमने ये देखा कि वीकनेस, कि विश्वामित्र मुनि की वीकनेस क्या? वशिष्ठ। तो उसके ऊपर उसने अपनी चपाती से की, उस तवे के ऊपर उसने अपनी चपाती से की। सो फोर्स विल ब्रिंग क्वांटिटी बट विनिंग पीपल हार्ट विल बी ओनली बाय क्वालिटी। Easiest way to get people to cooperate is by showing might. A better way is to offer benefits. But best way to influence people is by your purity and character. If you show them might, you gain their physical presence. Numbers increase. If you offer benefits, you gain intelligence. Ideas increase. But if you show them love, then you win their hearts. Commitment increases. आपने स्टालिन के बारे में सुना होगा, जैसे कि हिटलर ये बहुत क्रूर एक टायरेंट व्यक्ति हुआ, डिक्टेटर, वैसे ही स्टालिन था, जिसने लाखों की संख्या में नृशंस तरीके से लोगों को मारा स्टालिन ने। परंतु उसकी जीवनी, मैं एक दफा जब पढ़ रहा था कुछ टिटबिट्स उसकी जीवनी के, तो स्टालिन के विषय में बताया गया कि एक समय आया जब ये स्टालिन, जैसे कि हिरण्यकश्यपु टाइप व्यक्ति है, तो ये स्टालिन, इसको बीमारी हुई, और ऐसी बीमारी थी, जानलेवा बीमारी थी, कि ऑपरेशन करना जरूरी था। तो ये व्यक्ति अब इतना डर गया था, क्योंकि इतने लोगों को उसने क्रूरता से मारा था, तो पता नहीं कौन दुश्मनी के तौर पर इसे मार दे। तो जो सर्जन इस पर ऑपरेट करने वाला था, अब सर्जरी के पहले तो एनेस्थेसिया दिया जाता है, तो इसे क्या डर था, स्टालिन को क्या डर था, कि ये मुझे उस एनेस्थेसिया में जान से न मार डाले, तो मेरे ऑपरेशन को मैं देखना चाहता हूं। तो सर्जन को उसने कहा, बिना एनेस्थेसिया के कांट छाट करो। उस सर्जन बोला, बिना एनेस्थेसिया के तुम्हारा यहां से लेके पूरा पेट काटना है मुझे? तो सोचो, ये स्टालिन जो इतना अपने शरीर और अपने जीवन से आसक्त था कि इस हद तक उसने सहन किया, वो पूरा ऑपरेशन उसने बिना एनेस्थेसिया के करवाया। दिस इज द एक्सटेंट टू विच समटाइम्स डिक्टेटर्स, व्हेन दे वांट टू गेट थिंग्स डन बाय माइट, दे सिंपली गेट टेम्पररी फॉलोअर्स इन क्वांटिटी, दैट्स इट। तो अब हम इस प्रसंग में, हाँ, हमने ये लेसन्स लिए थे, त्रिशंकु, चीप शॉर्टकट्स विच आर दी प्लेजर्स इन द बिगिनिंग बट पेन इन द एंड, नेवर ट्राई टू गो टू अ प्लेस वेर यू आर अनवेलकम्ड, वेर यू आर नॉट क्वालिफाइड टू एंटर। और फिर विश्वामित्र मुनि और इंद्र से हमने सीखा, व्हेन टू प्राउड पीपल फाइट द रिजल्ट इज अ सफरिंग, त्रिशंकु, पर्सनल वर्सेस एक्वायर्ड एम्बिशन। मेरे ख्याल से ये हमारे पिछले सत्र का आखिरी स्लाइड था, heaven was no longer Trishanku's personal ambition, but rather it had become Vishwamitra's acquired ambition. तो विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को ऊपर भेजे अपने पूर्ण तपोबल से, और इंद्र ने फिर से त्रिशंकु को नीचे फेंक दिया. तो यहां पर विश्वामित्र और इंद्र के बीच में अब होड़ लग गई, और बीच में त्रिशंकु वो त्रस्त परेशान. तो जब विश्वामित्र मुनि ने यह देखा कि ये अब मेरे तपोबल से सहशरीर इंद्र के लोक पर नहीं जा सकता, जब विश्वामित्र मुनि को इस समझ में आ गया कि यह असंभव है, हालांकि विश्वामित्र मुनि जानते थे, परंतु क्योंकि वो वशिष्ठ मुनि का फीचर बीच में त्रिशंकु ले आया था, इसलिए विश्वामित्र मुनि थोड़ा कैरिड अवे हो गए थे. लेकिन अब उनको जब समझ में आया कि ये असंभव है, तो विश्वामित्र मुनि ने क्या किया कि ठीक है, मैं अपना स्वयं का स्वर्ग बनाऊंगा. यदि इंद्र एंट्री नहीं दे रहा है त्रिशंकु को, तो मैं पैरेलल हेवन बनाऊंगा अपने तपोबल से. तो अपने तपोबल से फिर एक पैरेलल हेवन का निर्माण किया, मतलब सब कुछ जो इंद्र लोक में है, वही नंदन कानन गार्डन्स, सारी अप्सराएं, सोमरस इत्यादि सब कुछ क्लोन, जिसको बोलते हैं क्लोन्ड हेवन, अपने तपोबल से और पूरी शक्ति लगा दी. अब देखिए, इनका एम्बिशन कुछ और था, ब्रह्म ऋषि बनने का, वो सब साइड में रह गया. अभी अब यहां पर कुछ भी हो जाए, मुझे त्रिशंकु के लिए एक स्वर्ग निर्माण कर देना है, दिखाना है मुझे कि मैं भी कर सकता हूं. तो अब यहां पर पूरी अपनी जब शक्ति लगा दी, तो विश्वामित्र मुनि का जो सर है वो त्रिशंकु की तरह फटने लगा, क्योंकि अब वो उसको सहन नहीं कर पा रहे थे. अपनी पूरी शक्ति क्षीण हो गई, पूरा जैसे कि डिस्चार्ज हो गए, बैटरी डिस्चार्ज हो गई अभी. तो हम यहां पर नेक्स्ट 26th लेसन क्या लेते हैं, विश्वामित्र मुनि और इंद्र के बीच. इट इज डिफिकल्ट टू एम्पथाइज विद द सफरिंग ऑफ अदर्स व्हेन वी आर टू एब्सॉर्ब्ड इन ट्राइंग टू प्रूव आवरसेल्व्स राइट. तो यहां पर बेचारा त्रिशंकु, अभी उसको बेचारा कहेंगे कि उसके अनुसार उसने तो एक मासूम सी इच्छा प्रकट करी थी, परंतु उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये इस हद तक ये बात पहुंच जाएगी कि अब इन दोनों के बीच में जो होड़ लग गई है, विश्वामित्र मुनि और इंद्र के बीच में. तो एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है कि जब दो व्यक्ति वो आपस में उनकी अनबन होती है, तो अफेक्ट क्या होता है, जो उनका मिशन है, जिस मिशन के लिए उनको नियुक्त किया गया है, वो मिशन अफेक्ट होता है. जैसे एक स्टोरी है, एक पिता और पिता के दो पुत्र, वो दोनों पिता की मालिश करना चाहते थे, परंतु दोनों पुत्र जो हैं वो एक दूसरे से उनकी बनती नहीं थी. तो एक ने एक पिताजी का पैर ले लिया मालिश करने के लिए, दूसरे ने दूसरा पैर ले लिया. अब दोनों पिताजी की सेवा कर रहे हैं एक दृष्टिकोण से, परंतु एक दूसरे से द्वेष की दृष्टि में देख रहे हैं, और जोर जोर से पिताजी इन दोनों को देख रहे हैं कि भाई तुम लोग मालिश कर रहे हो या अपना गुस्सा मेरे पैर पे निकाल रहे हो. अब करते करते क्या किया इन्होंने कि ये एक, जहां पर इसका भाई दूसरे पैर की मालिश कर रहा था, तो वहां जाकर पिताजी के पैर को चिमटा मार रहा है. क्यों? क्योंकि पिताजी को लगेगा कि कि ये जो मेरा बेटा है ये मालिश के बजाय मुझे चिमटा मार रहा है। तो इसने देखा तू मेरे साइड पे चिमटा मार रहा है, मैं तेरे साइड पे चिमटा मार रहा हूं। तो फाइनली दोनों कर क्या रहे थे, दोनों बस अपना हुक्म का इक्का आगे होना चाहिए, तो एक दूसरे के अगले पैर के सामने चिमटा मार रहे हैं। और सफर कौन हो रहे हैं, बेचारे लेटे हुए पिताजी वो सफर हो रहे हैं। इसलिए ये जो 26 लेसन है ये विश्वामित्र और इंद्र ये हमें सिखा रहे हैं। फिर जब हमने अभी सुना कि विश्वामित्र मुनि का पूरा तपोबल क्षीण हो गया और अब उनका सर फटने लगा वो पैरेलल हेवन बनाने के बाद, तब फाइनली विश्वामित्र मुनि भगवान विष्णु का नाम पुकारे। और जब भगवान विष्णु का नाम उन्होंने पुकारा तो भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए, क्योंकि अब तक वो शिव जी ब्रह्मा जी इनकी शरण ग्रहण कर रहे थे। तब उनको समझ में आया कि ये जो मेरी परिस्थिति है ये विकट परिस्थिति मेरी, इस विकट परिस्थिति में ना तो ब्रह्मा जी मेरी मदद कर पाएंगे ना शिव जी मदद कर पाएंगे, इंद्र तो सवाल ही नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति मेरी मदद कर पाएंगे वो है भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु के नाम उच्चारण करते हुए उनको जब पुकारा, भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है विश्वामित्र, तुमने ये जो एक निर्माण किया है नए स्वर्ग का, जिसको तुमने निर्माण तो कर दिया परंतु तुम मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो भगवान विष्णु अगला लेसन क्या सिखा रहे हैं, उन्होंने विश्वामित्र मुनि से कहा कि ठीक है मैं मेंटेन करूंगा, इट इज इजी टू क्रिएट, वेरी इजी टू डिस्ट्रॉय, बट द मोस्ट डिफिकल्ट इज टू मेंटेन। तो यहां भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान विष्णु कौन है जो मेंटेनेंस देखते हैं, क्यों, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। किसी भी चीज को या रिश्तों को या हमारी साधना को शुरू करना, हरे कृष्ण महामंत्र जब शुरू करना बहुत आसान है, छोड़ना उससे भी आसान है, बंद करना उससे भी आसान है, उसको मेंटेन रखना, इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे डोंट बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी डिवोटीज विल कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड डोंट बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी डिवोटीज विल लीव कृष्ण कॉन्शियसनेस, यू शुड बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी डिवोटीज विल स्टे कृष्ण कॉन्शियस। मेंटेनेंस वो सबसे मुश्किल चीज होती है। इस होलीनेस राधानाथ महाराज की एक व्यास पूजा ऑफरिंग में ब्रह्मचारी आश्रम में राधानाथ महाराज को ऑफरिंग्स दे रहे थे, स्वयं महाराज भी थे वहां पर, तो महाराज को ऑफरिंग्स दे रहे थे। तो मुझे अभी भी याद है हमारे उस समय रघुपति प्रभु, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर ऑफरिंग करी, उन्होंने कुछ 5-10 मिनट की ऑफरिंग के एंड में कहा, एक मार्मिक बात कही उन्होंने। उन्होंने राधानाथ महाराज से कहा, महाराज दिस राधा गोपीनाथ टेम्पल, व्हेन आई केम टू राधा गोपीनाथ टेम्पल आई रियलाइज्ड दैट आई वाज नॉट द रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ राधा गोपीनाथ टेम्पल, आई डिडंट क्रिएट राधा गोपीनाथ टेम्पल and I see this Radha Gopinath temple is maintained so wonderfully, again when I think about myself I know that I am not the reason for the maintenance also, I was not the reason for the creation of the temple, I am not the reason for the maintenance of the temple, my only prayer unto you is please bless me that at least I should not become the reason for the destruction of this temple. बहुत हैवी बात बोली उन्होंने. Please bless me that I do not become the reason for the destruction of this temple. कम से कम हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं. We are neither the creators, we are nor the maintainers. At least we should not become the reason for the destruction of the mission. That we can become. We have the potential. We don't have the potential to become the creators. We don't have the potential to be the maintainers. But yes, we have the potential to become the destroyers. तो इसलिए भगवान ने विश्वामित्र मुनि से कहा कि निर्माण तो कर दिया तुमने इस नए स्वर्ग का, तुम इसे मेंटेन नहीं कर पाओगे. इसलिए ठीक है, मेरे नामों का उच्चारण तुमने किया है तो मैं मेंटेन करूंगा इसे, भगवान कहे. तो अब त्रिशंकु वो खुश हो गया कि चलो भगवान स्वयं आ रहे हैं, वो मेंटेन करेंगे, तो चलो मेरे लिए एक मेरा खुद का पर्सनलाइज्ड मेरा स्वर्ग हो गया होगा मेरे लिए. तो भगवान अब त्रिशंकु की ओर देखे और त्रिशंकु से कहे कि नहीं, इतना आसान नहीं है त्रिशंकु. ये जो तू जबरदस्ती मान सम्मान चाह रहा है, ये नहीं मिलेगा ऐसे. तो भगवान ने त्रिशंकु को कहा कि तू इस स्वर्ग में रहेगा. त्रिशंकु खुश हुआ, परंतु कैसे रहेगा? उल्टा लटका हुआ रहेगा तू हर समय इस स्वर्ग में, और तेरे इसी बदसूरत शक्ल के साथ तू उल्टा लटका हुआ रहेगा. तो ये जो अगला लेसन है, ये हमें क्या सिखाता है? त्रिशंकु सिखा रहे हैं फोर्स्ड ग्लोरी, क्योंकि त्रिशंकु ये सब कुछ नियमों के विरुद्ध जाकर कर रहा था. ये नियमावली में ये सब कुछ नहीं था, तीन नियमों के विरुद्ध. इसलिए उसको बोलते हैं फोर्स्ड ग्लोरी. सो वेन एवर समबडी फोर्सेस ग्लोरी, इट इज लाइक अपसाइड डाउन त्रिशंकु. त्रिशंकु ने क्या मांगा था और क्या मिला, क्या चाहा था और क्या मिला. इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी हम इच्छा करें तो सोच समझकर इच्छा करनी चाहिए. गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में वो इच्छा होनी चाहिए. एक बार एक घर में पत्नी ने अपने पति से न्यूज़पेपर मांगा. पत्नी ने कहा थोड़ा न्यूज़पेपर देना. तो पति थोड़ा एडवांस्ड विचारों का था, तो पति ने पत्नी से कहा तुम कैसे पुराने ख्यालात की हो आजकल, तुम्हें पता नहीं कि आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तुम्हें न्यूज पढ़नी है ना, मैं मेरा आईपैड देता हूं. तो उसने आईपैड दिया, लो आईपैड लो. तो अचानक से आईपैड को जमीन पर मारने की आवाज सुनाई दी हस्बैंड को. तो भाग कर गया कि भाई क्या हुआ. तो पत्नी ने न्यूज़पेपर कॉकरोच मारने के लिए मंगाया था. तो क्योंकि पति ने आईपैड दिया तो आईपैड से कॉकरोच को मारा. लेसन क्या है? बीवी जब कुछ मांगे वो दे दो, अपना दिमाग मत लगाओ. जब पति अपना दिमाग लगाते हैं तो तो आईपैड के टुकड़े टुकड़े होते हैं। ये लेसन इसमें नहीं है, ये बोनस संडे स्पेशल। तो अब कल्पना कीजिए, त्रिशंकु को स्वर्ग तो मिला परंतु स्वर्ग में उल्टा लटका हुआ है वो, और स्वर्ग की अवधि बहुत होती है। क्या कैलकुलेशन है, हमारे यहां का 6 महीना, वहां के केवल 12 घंटे होते हैं। तो सोचो इतनी लंबी अवधि अब त्रिशंकु उल्टा लटका हुआ वहां पर। तो विश्वामित्र मुनि अब उन्होंने ये सब कुछ देखा। तो हम कुछ और लेसन्स पहले त्रिशंकु से भी लेते हैं कि त्रिशंकु का ये हाल हुआ। रामायण बताते हैं, ग्रंथकार बताते हैं कि क्यों हुआ, क्योंकि त्रिशंकु वो भगवान के नियमों के विरुद्ध कुछ चाहता था। When one tries to go against the laws of God, one suffers so much. तो आज की भाषा में अगर कहें तो त्रिशंकु रजनीकांत बनना चाहता था, है ना। उनके विषय में बोला जाता है कि वो जो भी कुछ करते हैं, he defies the laws. इसलिए जापान में वो बहुत फेमस है, आपको पता है, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बॉलीवुड एक्टर्स इन जापान। क्यों? क्योंकि जापान में सब लोग इतना स्ट्रिक्ट सब सिस्टम्स और नियम के अनुसार चलते हैं, तो जब इनकी मूवीज देखते हैं तो उनको पूरा उनके कंसेप्शन को तोड़ते हुए इनकी मूवीज होती है, कि जिसके अंदर कोई रूल्स नहीं है। व्हेन रजनीकांत शूट्स अ बुलेट, व्हेन रजनीकांत इज शॉट बाय अ बुलेट, देयर इज अ फ्यूनरल ऑफ द बुलेट, है ना। ये ऐसे आजकल बहुत फेमस हो गया वो, तो बहुत उसके ऐसे कोट्स आते हैं, रजनीकांत कैन विसल इन 5 languages। एक कुकिंग शो में गए वो, कुकिंग शो में ऑब्वियसली वही जीतेंगे, लेकिन आइटम क्या बनाया उन्होंने, लाल मिर्ची की मीठी खीर, ये आइटम बनाया उन्होंने, नंबर 1 आयो। सो त्रिशंकु वॉज लाइक रजनीकांत, वॉन्टेड टू बिकम समवन हु कैन डिफाई ऑल लॉज ऑफ गॉड। तो ये होता है व्हेन वन ट्राइज टू गो, सो ही सफर्स मोस्ट। तो वशिष्ठ मुनि उन्होंने त्रिशंकु को समझाया, फाइनली अब त्रिशंकु उल्टा लटका हुआ है तो वशिष्ठ मुनि उधर भी जाकर उनको समझा रहे हैं। Never underestimate the wisdom of experienced and realized souls. When grandfather was telling to the grandchild, kindly do as I say. अक्सर जो बच्चे हैं वो बुजुर्गों का ज्यादा सुनते नहीं, तो दादाजी अपने पोते को कह रहे हैं, kindly do as I say, not because I am right, because I have more experience of being wrong. इसलिए हमको कहा जाता है ना, बुजुर्गों की, बड़ों की सुनो। ये कोई जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट होंगे, परंतु उनको इतना अनुभव है इम्परफेक्ट होने का भी, कि वो हमको संभाल लेंगे। इसलिए वशिष्ठ मुनि ने ये उनको उपदेश दिया। अब विश्वामित्र मुनि, आपको क्या लगता है, विश्वामित्र मुनि ने हार मान ली? नहीं, अभी तक हार नहीं मानी विश्वामित्र मुनि ने। पूरा डिविएट हुए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए निकले थे, ब्रह्मा जी को रिझाने के लिए निकले थे, बीच में त्रिशंकु आ गया, पूरे कहानी ने मोड़ लिया, अब ये इंद्र को अपना प्रतिद्वंद्वी मानने लगे, उनके साथ होड़ हुई और ये सब कुछ हो गया, विष्णु आ गए, अलग से स्वर्ग बना, त्रिशंकु उल्टा लटका हुआ है वहां पर, सब कुछ हुआ। अब विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि नहीं, मेरे मकसद से फिर मैं पथभ्रष्ट हो गया। तो अब विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि जगह में प्रॉब्लम है शायद। किसमें प्रॉब्लम है? जगह में प्रॉब्लम है, वास्तु ठीक नहीं है। ये साउथ का, साउथ में कर रहे थे ना वो, बोले यहां पे ठीक नहीं है, सब कुछ फर्मेंटेड है इधर, तो इसलिए मुझे वेस्ट में जाना चाहिए, वेस्ट में। सो नाउ विश्वामित्र मुनि वॉज ब्लेमिंग द प्लेस, जगह में खोट है। जैसे मैं भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग उनकी जीवनी भी है। तो भगवान बुद्ध जब वो बोधगया से निकले तो वो सबसे पहले, आप कल्पना करेंगे कि कहां आना चाहते थे वो, सभी प्रांतों में, भारत के सभी प्रांतों में वो प्रचार के लिए निकले थे, तो सभी प्रांतों में से सबसे पहले उन्होंने कौन सा राष्ट्र चुना? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आना चाहते थे वो। तो जब महाराष्ट्र आने की इच्छा व्यक्त की तो उनके एक शिष्य ने उनको कहा कि नहीं 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 नहीं, वहां पर आप जिसका प्रचार करने के लिए जा रहे हो अनुकूल नहीं है वो राष्ट्र, प्रतिकूल रहेगा आपके लिए। तो बहुत सुंदर भगवान बुद्ध का और उनके शिष्य का इंटरेक्शन उनकी जीवनी में बताया गया। तो भगवान बुद्ध ने पूछा, तुम कह रहे हो कि महाराष्ट्र मेरे लिए प्रतिकूल रहेगा, वहां के लोग? ने कहा हां वहां के लोग, शिष्य ने कहा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं क्या करेंगे, वो मेरा सत्कार नहीं करेंगे, अपशब्द कहेंगे, ठीक है। तो फिर शिष्य ने कहा, तो यदि वो आपका अपमान करें तो आपको स्वीकार होगा वो? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, अरे अपमान ही करेंगे ना, मुझे शारीरिक रूप से मारेंगे तो नहीं। तो शिष्य ने कहा, यदि वो आपको शारीरिक रूप से मारने लगे तो? तो भगवान बुद्ध ने कहा, अस्त्र शस्त्र से तो नहीं मारेंगे ना, जान से तो नहीं मारेंगे ना। तो शिष्य ने पूछा, मान लो वो आपको जान से, अस्त्र शस्त्र से जान से मार दें? तो भगवान बुद्ध ने कहा, तब तो मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा कि इस भौतिक शरीर को वो अंत कर देंगे। ये उनका कॉन्शियसनेस था। परंतु यहां विश्वामित्र मुनि, उन्होंने क्या किया, He started to blame the place. कि कमजोरी उनकी थी, परंतु अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं किया, परंतु ये जगह में प्रॉब्लम है। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, जब फेल हो जाता है, एग्जाम में फेल हो गया, और वो कहता है वो पेन ठीक नहीं था। फेल क्यों हुआ? अगर पिताजी पूछते फेल क्यों हुआ, वो पेन ठीक नहीं था, या वो बेंच बहुत हिल रहा था तो बराबर लिख नहीं पाया, या वो एग्जामिनर उसकी शक्ल ठीक नहीं थी, या जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया था उसने ठीक से क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया, मैंने जो पढ़ाई की थी वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं उसने। तो मान लो कि ये सारे एक्सक्यूजेज अगर कोई विद्यार्थी देने लगे, पेन ठीक नहीं था, बेंच ठीक नहीं थी, एग्जामिनर की शक्ल ठीक नहीं थी, क्वेश्चन पेपर ये वो, उस प्रकार से यहां पर विश्वामित्र मुनि क्या करने लगे, ही स्टार्टेड टू प्ले द ब्लेम गेम एंड ही चेंज्ड द लोकेशन। तो अब ये तीनों, त्रिशंकु, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, ये हमें क्या सिखाते हैं? त्रिशंकु रिप्रेजेंट्स दैववाद। दैववाद क्या है? कि मुझे कुछ नहीं करना है, दैव सब कुछ करेगा। अक्सर आजकल लोग जब मंदिर उनको बुलाया जाए या आध्यात्म का पालन करने के लिए कहा जाए तो बोलते हैं भगवान जब बुलाएंगे तब आएंगे। भगवान की जब इच्छा होगी तो अपने आप माला मेरे हाथ में आएगी। हाँ, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, अपने आप माला उड़ के मेरे हाथ में आएगी। इसको बोलते दैववाद। तो उनसे पूछा जाए कि पैसे भी ऐसे अपने आप उड़ के आते हैं? नहीं, उसके लिए 9 से 5 काम करना पड़ता है, तब कर्मवाद आ जाता है। आध्यात्म की बात बोलो तो दैववाद आ जाता है। तो त्रिशंकु वो दैववाद। विश्वामित्र मुनि, मैं ही करके दिखाऊंगा, मैं करता हूं, स्वर्ग में जाने नहीं दिया, मैं स्वर्ग बनाऊंगा, यह है कर्मवाद। और वशिष्ठ मुनि वो भक्तिवाद। ये एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, परंतु हम इसको अभी नहीं लेंगे, केवल इसके ब्रॉड लेसन्स हम सीख रहे हैं इन 3 व्यक्तियों से। अब जब विश्वामित्र मुनि वो तपस्या करने के लिए, अब उन्होंने लोकेशन चेंज किया, साउथ से वो गए वेस्ट, वेस्टवर्ड्स अब वो अपनी तपस्या करने के लिए निकल पड़े। अब जहां पर वो तपस्या, पश्चिमी दिशा में जो तपस्या उन्होंने प्रारंभ करी, तो वहां पर एक राजा जिनका नाम अम्बरीश, ये जो भागवत में मेंशन है वो नहीं है, ये दूसरे हैं। तो राजा अम्बरीश वो एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो हम अब फिर से विश्वामित्र मुनि को उनकी तपस्या के लिए अकेला छोड़ देते हैं, जैसे हमने पिछली बार कैमरा त्रिशंकु के ऊपर, अब कैमरा हम अम्बरीश नाम के ये व्यक्ति राजा। तो ये एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अब देखिए, जब भी कोई तपस्या करता, जब भी कोई ऐसा अश्वमेध यज्ञ करता, तो सबसे पहले इनसिक्योरिटी किसको फील होती? देवराज इंद्र को। उनको लगता है कि ये मेरा पोस्ट के लिए कर रहा है। पता नहीं क्या फोबिया उनके अंदर है कि कोई दूर दराज कहीं तपस्या कर रहा है, बेचारा अपना तपस्या कर रहा है अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, इंद्र को लगता है मेरा पोस्ट के लिए कर रहा है ये। उनको लगता है कि उनका पोस्ट ऐसा है कि सब लोग उसके पीछे लालायित है। कई बार लोग इस भ्रम में भी रहते हैं। तो इंद्र अगला 35th लेसन क्या सिखा रहे हैं कि उनके अंदर इनसिक्योरिटी हुई, और ऐसे बहुत से अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को चुरा चुरा के रखा हुआ है इंद्र ने। पृथु महाराज, पृथु के भी घोड़ों को चुराया, उनके अस्तबल में बहुत ऐसे घोड़े खड़े होंगे चुराए हुए। तो यहां पर ये राजा अम्बरीश ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वो अश्व की जब बलि चढ़ाने का समय आया, तो पुरोहित वो महाराज अम्बरीश से कहते हैं कि अब लाओ फाइनल, उसकी बलि चढ़नी है। तो अश्व गायब, किसने चुरा लिया? देवराज इंद्र ने अश्व चुरा लिया। तो अभी ये आके रिपोर्ट करते हैं, वो अश्व तो गायब हो गया। तो ये पुरोहित इतना क्रोधित हो गया अम्बरीश महाराज के ऊपर कि अरे तुम्हें अकल नहीं है, तुमको इतना मैंने जो मेहनत करी, जो फाइनल रिजल्ट है वो आने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है वही गायब हो गया। तुम सो रहे थे क्या? क्या कर रहे थे तुम? व्हाट्सएप पे थे? तो अम्बरीश वो अब इस प्रसंग में हमें क्या सिखाते हैं, स्लाइट इन अटेंशन इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस माइट बी डिजास्ट्रस। नजर हटी दुर्घटना घटी। अजामिल को नजर हटी नहीं थी, वो तो टिका के रखा था नजर, इसके वजह से दुर्घटना घटी। तो अम्बरीश ये हमें सिखाते हैं। फिर ये एक व्यक्ति हैं ऋचिक ऋषि। तो पुरोहित ने कह दिया कि भाई अब तुम क्या करो कि ठीक है वो घोड़ा तो अब गायब हो गया, उसको तो समय नहीं ढूंढ कर लाने का, तो तुम एक ऐसे इंसान को लेकर आओ जो स्वेच्छा से बलि चढ़ने के लिए वो एग्री हो जाए. इमेजिन करो कौन होगा कि स्वेच्छा से ऐसे इंसान को ढूंढ कर लेकर आओ. तो अब ये अम्बरीश महाराज निकल पड़े और इन्होंने देखा वहां पर ये ऋचिक ऋषि नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ वो वहां पे रहते थे. इनकी पत्नी, अच्छा अब इनकी पत्नी कौन है, इनकी पत्नी है कौशिकी. आपको यदि याद होगा कौशिकी, कौशिक की बहन. कौशिक कौन? विश्वामित्र मुनि. तो आ रहा है ना कनेक्शन, कनेक्शन आ रहा है ना यहां पे. तो देखिए ये हमारे शास्त्रों में सारी जो ये कहानियां हैं इनके अंदर हालांकि एक डिटूर होता है. अभी जैसे कि त्रिशंकु का डिटूर हुआ लेकिन फिर भी उसका कनेक्शन विश्वामित्र मुनि से फिर से आ गया, वशिष्ठ मुनि से आ गया. यहां पर अब ये अम्बरीश महाराज की स्टोरी शुरू हो गई. विश्वामित्र मुनि को हमने अकेले छोड़ दिया तपस्या करने के लिए, परंतु यहां पर कनेक्शन आ गया कि अब ये अम्बरीश महाराज ऋषिक ऋषि के पास चल रहे हैं जो कि गृहस्थ हैं, जिनकी पत्नी वो विश्वामित्र मुनि की बहन हुई. तब ये हुए क्या, विश्वामित्र मुनि इनके जीजाजी, जिनके आगे जी पीछे जी, जीजाजी हुए. तो अम्बरीश महाराज जब पहुंचे ऋचिक ऋषि के पास और डायरेक्टली क्या मांग रहे हैं, ऋचिक ऋषि के तीन पुत्र थे, आपका एक पुत्र दोगे, क्या डोनेशन मांग रहे हैं? जैसे हमारे रिसीट बुक लेके डोनेशन मांगने जाते हैं. इमेजिन करो कि किसी के घर पे आप डोनेशन मांगने जा रहे हो जन्माष्टमी पर, आपके बेटा चाहिए हमको, क्यों, बलि चढ़ाना है उसको. तो बलि चढ़ाने के लिए वो बेटा मांग रहे हैं. तो ऋचिक ऋषि उन्होंने कहा कि देखो भाई मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो मेरा प्रिय है, वो तो मैं नहीं दूंगा. तो ऋचिक ऋषि की जो पत्नी कौशिकी तुरंत उसने कह दिया अम्बरीश महाराज को, जो मेरा सबसे छोटा बेटा है वो मेरा प्रिय है, वो मैं नहीं दूंगी. तो बीच वाला देख रहा है अपने माँ बाप को, बोला ये तो तुम लोगों के बीच में चल क्या रहा है. बाप बोल रहा है कि बड़ा वाला जो है वो मेरा फेवरेट है, मैं नहीं दूंगा. माँ बोल रही है कि छोटा वाला मेरा फेवरेट है. ये मझला बीच में ये दोनों को देख रहा है, तो फिर मैं कौन हूं, पैदा क्यों किया मुझे. तो यहां पर ऋचिक ऋषि से लेसन क्या सीख रहे हैं हम, सब्सटेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप इज टेस्टेड ड्यूरिंग द क्राइसिस सिचुएशन. रिश्ते कब तक अच्छे लगते हैं, कब तक बने हुए रहते हैं, जब तक कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं आती, तब तक हाँ हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. जैसे ही क्राइसिस सिचुएशन आती है तो ये कहा गया है कि दर्द के बारिशों में हम अकेले खड़े थे. बारिश बहुत हो रही ना, दर्द के बारिशों में हम अकेले खड़े थे, अचानक खुशियां बरसने लगी, पता नहीं ये भीड़ कहां से आ गई. तो जब खुशियां बरसती है तो भीड़ जमा हो जाती है आपके आसपास. जैसे ही दर्द की बारिश बरसने लगती है आप अपने आप को अकेला पाते हो. तो यहां पर अब हमारा फोकस होगा ये जो मिडिल वाला बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, इनका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो ये जो मिडिल सन, इसका नाम सूनशेप, किसका बेटा है, कौशिकी और ऋचिक, इनका जो मिडिल सन उसका नाम सूनशेप, संस्कृत का ये नाम है, इसका अर्थ है. और इसके पीछे की स्टोरी हम आगे बताएंगे आपको कि इनको ये नाम ऐसा क्यों मिला, तो सून शेप का अर्थ होता है कुत्ते की पूंछ। इमेजिन करो, कोई माता पिता अपने बेटे का ऐसा नाम रखेंगे। परंतु इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इन्होंने अपने इस बेटे का नाम ऐसा क्यों रखा, कुत्ते की पूंछ, सून शेप। तो अब ये सून शेप, इसने देखा न तो मेरी मां वो मुझसे प्रेम कर रही है, ये न मेरे पिता मुझसे प्रेम कर रहे हैं, जो यहां पर एक व्यक्ति मुझे यहां पर अपना बनाना चाहता है वो है ये अम्बरीश। तो जी के भी क्या फायदा, चलो वो इतना डिप्रेस हो गए, सुनशेप इतना डिप्रेस हो गए, उन्होंने बोला चलो तुम्हारे लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगा, क्या रखा है जी कर भी इस प्रकार से। तो सुनशेप जब एग्री हो गए कि चलो मुझे तुम बलि चढ़ा सकते हो, तो अब अम्बरीश महाराज बहुत प्रसन्न हुए, चलो अरे तुरंत मिल गया मुझे, और वो भी एक यंग, ऐसा व्यक्ति जो यंग है और अपने स्वेच्छा से बलि चढ़ना चाह रहा है, जो चाहिए था वो मिल गया। तो अब दोनों सुनशेप और अम्बरीश महाराज निकल पड़े। अब धीरे धीरे सुनशेप को पता चलने लगा, एहसास होने लगा कि क्या डिसीजन लिया है उसने, कि जीते जी मुझे बलि चढ़ाया जाएगा, मेरी बलि चढ़ेगी यहां पर। तो थोड़ा वो डरने लगे कि मैंने जल्दबाजी में कह दिया। तो फिर एक जगह आई जहां पर महाराज अम्बरीश, अब वो अब तक अपने वहां पर यज्ञस्थली तक पहुंचे नहीं है, तो वो रास्ते में विश्राम करने के लिए रुके। तो जब रास्ते में विश्राम करने के लिए वो रुके, लेट गए, उनको नींद आ गई, तो सुनशेप, उनको नींद नहीं आ रही क्योंकि बलि तो उनकी चढ़ने वाली है, कैसे नींद आए। तो सुनशेप कुछ सहायता कहीं से मिले, तो माता पिता ने तो वो डिसोन कर दिया, तो वहां पर तो कोई फायदा नहीं जाकर, तो फिर